कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे। आज हम इस प्रार्थना में श्री चैतन्य शिक्षाष्टक इनके चौथे श्लोक से अनुवाद पढ़ रहे हैं। न धनम न जनम न सुंदरिम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहेतुकी त्वयि। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन संपत्ति अनुयायी या सुंदर स्त्री, इनमें से किसी भी वस्तु की मुझे इच्छा नहीं है। जन्म जन्मांतर तक आपकी अहेतुकी भक्ति प्राप्त होती रहे, यही मेरी एकमात्र इच्छा है। ये श्लोक बहुत विचार करने जैसा है कि पूरा जो शिक्षा अष्टकम है ये भक्ति को प्राप्त करने के लिए बताया गया है, और भक्ति ये बहुत बड़ा विषय है। सागर की तरह इसके ऊपर चिंतन विवेचन किया गया है, लेकिन सामान्य व्यक्ति के लिए इतना आसानी से ये विषय समझ में नहीं आता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने इसको इस 8 श्लोकों में संक्षिप्त रूप में दिया है, ताकि हम क्या कहते हैं उसको, एट अ ग्लांस, एक दृष्टि से उसको समझने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन ये एक एक श्लोक जो है वो ऐसे अनंत गहरे सागर की तरह है। इसके अंदर इतनी अनुभूतियां हैं, इतने साक्षात्कार हैं, इतने हमारे लिए उपदेश हैं। तो ये जो 8 में से चौथा श्लोक जो है ये बता रहा है कि जन्म जन्मांतर में मुझे भक्ति ही करनी है। यहाँ तक कि जन्म जन्मांतर का अर्थ क्या होता है, मुझे लिबरेशन, मुक्ति भी नहीं चाहिए, तभी जन्म होगा ना दोबारा। अगर मुक्ति होगी तो दोबारा कैसे आएंगे। तो भक्त ये कह रहा है कि मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए, मुझे जन्म जन्मांतर तक बार बार लगातार मैं आता रहूँगा आपकी इच्छा के अनुसार, लेकिन मैं आपकी भक्ति में जुड़ना चाहूँगा। और ये करने के लिए क्या करना आवश्यक है, ये उसके पहले लाइन में बताएं। सेकंड लाइन में क्या बताएं, मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भवतात भक्तिर अहेतुकी त्वयि, आपकी अहेतुकी भक्ति प्राप्त होती रहे जन्म जन्मांतर तक। तो करना क्या है, न धनम न जन्म न सुंदरी, बहुत बेसिक मूलभूत विचार है ये। सबसे बड़ी आसक्ति हर व्यक्ति की धन में होती है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो भक्त हो या ना हो जिसको धन नहीं चाहिए। और जब तक धन में आसक्ति है, धन का होना बुरा नहीं होता है, धन कमाना बुरा नहीं होता है, धन का उपयोग स्वार्थ के लिए और इंद्रिय भोग के लिए करना गलत है। धन का उपयोग करके जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी करना पाप नहीं है, उल्टा वो भगवान की भक्ति में गिनती कर सकते हैं उसके। अगर आप भगवान के भक्त हो तो आपकी आमदनी आपके खाने पीने वस्त्र रहने में अगर खर्च होती है तो वही भक्ति है। तो विरोध किसके लिए किया गया है, इसमें जरूरत से अधिक आसक्ति रखना और उसके पीछे भागना और उसके लिए कुछ भी करना, चाहे किसी की जान भी लेनी पड़े, चाहे किसी का नुकसान भी करना पड़े, चाहे किसी को कोई उध्वस्त हो जाए, फिर भी मैं अपना काम धन कमाने का करते रहूँगा, ये गलत है। और दूसरा है धन के साथ साथ चलने वाला एक विषय, वो है पुरुष को स्त्री में आसक्ति और स्त्री को पुरुष में आसक्ति। इस विषय का दिन रात चिंतन चलते रहता है। मैं ये बहुत ही कई सालों के चिंतन के बाद में आपको ये बता रहा हूं, स्त्री के विषय में पुरुष के मन में विचार और पुरुष के मन में स्त्री के विषय में विचार निरंतर चलते रहते हैं, चाहे वो विवाहित हो या अविवाहित हो, विषय ऐसा है। और शास्त्र और संतगण कहते हैं कि जब तक पुरुष के मन में स्त्री के विषय में विचार चलते रहेंगे, आसक्ति चलती रहेंगी, भगवान की प्राप्ति नामुमकिन है। भूल जाओ उसको कि भगवान कभी प्राप्त होंगे। तो एकदम लोकल भाषा में अगर कहना है, एकदम लोकल भाषा में, तो चमड़ी और दमड़ी, इसमें जब तक आसक्ति है तब तक भगवान बहुत दूर है, और इसकी आसक्ति जब निकलेगी कम से कम प्रयास होगा। देखो ये बहुत कठिन विषय है, धन की आसक्ति नष्ट करना और सेक्स की आसक्ति नष्ट करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन अगर कम से कम हमको ये जानकारी हो कि ये गलत है, ये डेंजरस है, ये खतरा वाला विषय है, ये शुरुआत है, और उसके बाद में उसमें प्रयास करना कम से कम, ये भी अच्छी बात है। जब कभी हमारे ऊपर नियंत्रण आएगा उन वस्तुओं के ऊपर, धन की लालसा निकल जाएगी और बाकी भी लालसा निकल जाएगी स्त्री पुरुष के विषय में, वो तो यश है हमारा, वो तो लक्ष्य है, लेकिन उस मार्ग में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार इस विषय में चिंतन करना जरूरी है, क्योंकि अगर आपको भौतिक प्रगति भी करनी है, मतलब आगे बढ़ना है, बहुत धन कमाना है, बहुत बड़ा आदमी बनना है, बहुत इन्फ्लुएंशियल बनना है, तो भी इन चीजों को छोड़ना पड़ता है। याद रखना, बड़े बड़े अधिकारियों का पतन किसमें होता है? ये तो पैसे के भ्रष्टाचार में होता है या स्त्री पुरुष के विषय में होता है? देखिए आप राजनीति के लोग देखो, या कोई संत कोई है किसी संप्रदाय में, कोई बड़ा नामी संत है, क्योंकि पेपर में क्या आता है, किसी औरत के साथ पाया गया और करोड़ों की संपत्ति दबा के रखी है ना। ये दो विषय ऐसे हैं जो संतों के लिए भी हानिकारक है, और संतों का पतन भी दो विषय में होता है। इतनी डेंजरस चीज है ये। अगर संतों का हो सकता है जो भजन करने वाले हैं, तो हमारी क्या स्टोरी है इसके अंदर, अपने का कथा। इसलिए सामान्य हो या आप असामान्य हो, आप एकदम ऑर्डिनरी व्यक्ति हो या बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति हो, प्रसिद्ध व्यक्ति हो, पढ़ी लिखी व्यक्ति हो, धनवान व्यक्ति हो, कुछ भी हो, दोनों प्रकार के व्यक्तियों को इन दो प्रकार के मोहों से दूर रहना चाहिए। अगर आपको जीवन में क्लीन प्रगति करनी है बिना रुकावट की, भले धीरे धीरे हो लेकिन क्लीन, एकदम स्वच्छ और स्थिर प्रगति करनी है, तो आपको इन दोनों विषयों से दूर रहना चाहिए। गृहस्थ आश्रम है, घर में पत्नी है, पति है, बच्चे हैं, उनमें मन लगाओ, और धन दौलत को कमा सकते हैं लेकिन उसको जरूरत के लिए उपयोग करो, अधिक लोभ मत रखो। विभीषण ने भी रावण को कहा था, महाराज आपके अंतपुर में इतनी सारी रानियां हैं, आप उनमें अनुराग रखिए, सीता एक ज्वालामुखी है, उसके साथ आप मत खेलना, आपके राक्षस वंश का नाश हो जाएगा इससे। ये विभीषण ने भी रावण को कहा था, इतना बड़ा व्यक्ति था वो, पावरफुल विद्वान था, शक्तिशाली था, लेकिन नाश किससे हुआ? एक स्त्री की आसक्ति की वजह से। तो ये इतिहास हमें क्यों पढ़ना चाहिए बार बार? क्योंकि बड़े से बड़े व्यक्ति भी इन दो घसरगुंडियों पर आएंगे तो वो रसातल में पहुंच जाएंगे, नरक में पहुंच जाएंगे। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवा, ये महापाप महान महानाश के कारण है। इसलिए हम तो सामान्य व्यक्ति, हम तो महान व्यक्ति नहीं, लेकिन हमें भी सावधान रहना चाहिए कि धन का दुरुपयोग ना हो, धन के लिए लोभ ना हो, और पुरुष के लिए स्त्री का और स्त्री के लिए पुरुष की आसक्ति ना हो, तब जाकर हमारा जीवन पहले तो स्थिर होगा, पतनशील नहीं होगा, और स्थिर होने पर भी प्रगति होगी उसके अंदर, और तभी जाकर भगवान हमें मिल सकते हैं। जब तक ये विषय हम नहीं छोड़ते हैं, उसके बाद ही भगवान, मतलब भगवान नहीं मिलेंगे, और ये विषय को छोड़ेंगे तो भगवान आपके हो जाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।